राधा कुंडम गिरिवर महो राधिका माधव प्राप्तो जस फिर कृपया श्री गुरु तम वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौर विजये शंकरशनः कारणतो यशायी गर्भोदसायी च पयोदिशायी शेषस्य शान्तकलासं रामः शरणं मम आज बलदेव पूर्णिमा है। बलदेव जी का आज ही आविर्भाव हुआ था आज ही के दिन में, किंतु समय कब है 3 बजे सवेरे शाम रात में आज ये कहीं निर्दिष्ट नहीं हुआ। जैसे नृसिंह देव का ठीक है, कृष्ण का आधी रात में हुआ, किंतु इनका भी कोई ठीक से पता नहीं ये कब हुआ। ये हम लोगों को समझना चाहिए कि बलदेव जी कृष्ण से अभिन्न है। कृष्ण सत चित आनंद है। ये तीनों मिलकर के कृष्ण सच्चिदानंद बने हैं। एक कृष्ण की 3 शक्तियां हैं, संबित, संधिनी, लादिन। इसमें से कृष्ण है चित स्वरूप, और फिर भाव स्वरूप, भाव माने रस, रस स्वरूप हो जाता है। ज्ञान कल जो व्याख्या कर रहे थे वो नहीं ज्ञान। ज्ञान की परिणति भाव में है, भाव की परिणति प्रेम में है, और वो बहुत दूर तक। इसलिए कृष्ण चित स्वरूप है, बलदेव जी सत स्वरूप है, और राधिका जी लादिनी आनंद स्वरूप है। कृष्ण के अधिष्ठ सत चित के अधिष्ठात्री देवता कृष्ण है, सत के अधिष्ठात्री देवता बलदेव प्रभु, और लादिनी या आनंद के अधिष्ठात्री देवी श्री राधिका जी हैं। ये तीनों मिल करके कृष्ण है। कृष्ण निर्विशेष एक तत्व नहीं है, इसमें बहुत चीजों का समावेश है। इस विषय में श्रीमान भक्ति वेदांत वो माधव महाराज जी, माधव है ना, माधव महाराज जी कुछ तुम्हारे बोला दिया है नहीं तो। ए बोला बोलो विकल बोलो तुम आज के काल के परसों 3 दिन मर खोला मैदान है। महिलाएं भी जो भक्त हैं वो लोग भी बोल सकती हैं, जैसे सविता है, कविता है, राग लेखा है, ये लोग उमा है, ये लोग भी तत्व को बोल सकती हैं। आज उन लोगों को भी खड़ा कराएं। है तुम्हारा बोसते पारो ऊपर है परिवराजक महाराज चले गए थे
कहाँ गेल? सामने आ रहे सामने।
मेरा नाम क्या है? भूल जाते हैं।
परमेश्वरी,
श्रीमान परमेश्वरी जी,
कुछ बलदेव प्रभु, श्री श्री बलदेव प्रभु जी के संबंध में कुछ प्रकाश है।
सज्जन महाराज जी, और ही विल स्पीक समथिंग अबाउट बलदेव प्रभु। तो विकास वाला should know. लौट करके नैमिषारण्य में
नैमिषारण्य में आने पर देखा कि हजार 88,000 ऋषि लोग वहां पर बैठे हैं और बीच में कौन लोभर्षण था, लोभर्षण वो था सूत गोस्वामी, वो एक तरह से व्यास का ही शिष्य था, वो पुराण इत्यादि का वक्ता था, भागवत पाठ या पुराण पाठ कर रहा। बलदेव जी आए, जितने ऋषि महर्षि थे वो उनसे भी श्रेष्ठ थे, अधिक श्रेष्ठ, किंतु उठ करके उनका अवधारण किया, किंतु वो शुरू उठा नहीं, आदर नहीं किया, उनकी अभ्यर्थना नहीं की, उन्होंने साधारण बलदेव जी नहीं समझा, भगवत तत्व के रूप में नहीं समझा या गुरु तत्व के रूप में। बलदेव जी धर्म के प्रतिष्ठापक है, जैसे धर्म का लोप हो जाएगा गुरु शिष्य का ये संबंध अलुप्त हो जाएगा, इसलिए उसको स्थापना करने के लिए अपने हाथ से ही ऐसे किया, उसका गला कट दिया, एक सेकंड नहीं लगा और वो समाप्त हो गए। जितने ऋषि महर्षि थे हाय हाय करने लगे, अरे ये हमको तो पुराणी इत्यादि शास्त्र सुनाता था और इसको बलदेव प्रभु जी ने मार डाला, हाय हाय करने लगे, और अभी कौन सुनाएगा, बलदेव जी ने जो हाय हाय क्यों कर रहे हो, अभी कहो तो इसको जीवित कर दे, नया उसका जीवन दे दे, और जीवित करके नया जीवन दान देने वाले थे। तो ऋषि महर्षि बोले, यानी आपने जो कुछ किया वो ठीक किया, किंतु हम चाहते हैं कि हमको कोई अच्छा सा वक्ता मिले जो हम लोगों को ये भगवत कथाएं सुनाए। मेरे साथ ही साथ में उसी का बेटा उग्र श्रवा, उग्र माने गए अच्छी तरह से सुनने वाले, ये सुखदेव और स्वामी के शिष्य, वो व्यास देव का शिष्य, और ये सुखदेव और स्वामी के ये शिष्य, इसलिए उनकी श्रीमद भागवत में पहले ही सुखदेव गोस्वामी की इन्होंने वंदना की, वो वंदना जो है वो ये गोस्वामी जी की है, उन्होंने वंदना की तात्पर्य क्या हुआ, यदि गुरु भक्ति नहीं है तो जीवन ही बेकार है, भक्ति नाम की कोई चीज नहीं है। जैसे उसने बताया ना, गुरु निष्ठा है बैकबोन ऑफ भक्त, यदि गुरु निष्ठा ही समाप्त हो गई तब तो बाकी क्या है। इसकी प्रतिष्ठा के लिए बलदेव जी ने ये काम किया, क्रोधवश के बस में नहीं किया कि हमारा अपमान कर रहा है, भगवान को मान अपमान सुखदेव गोस्वामी को नहीं है, भक्तों को भी मान अपमान का बोध नहीं होता है, तो इनको क्या मान अपमान का बोध होता है, नहीं प्रतिष्ठा करने के। एक व्यक्ति मान लिया हम संसार में डूबे हुए हैं और वो व्यक्ति हमारे पास में आकर के कुछ बड़ी कथा सुनाया और शुद्ध गुरु के पास में लाया, उसका ऋण चुका सकते हो कि नहीं, अंडरस्टैंड। इफ ए पर्सन केम टू अस एंड ही टोल्ड सो मेनी हरि कथा एंड टोल्ड दैट लेट अस कम विथ मी, I am taking you to a real bona fide guru, and he brought, and then he received the mantra from Guru. Anyone, can anyone repay him, those who brought to Guru? यदि इसी गुरु को ही हम लोग यदि अवज्ञा करते हैं तो भक्ति नष्ट हो जाएगी, और जो ज्ञान प्रदाता है कृष्ण के चरणों में जो लाता है हरी कथा के माध्यम से हमारा चित्त संशोधन किया, तत्व ज्ञान हुआ, सब कुछ हुआ, उसका ऋण कोई चुका सकता है? ऐसे व्यक्ति जो गुरु का
क्या कहा,
ऐसे व्यक्ति गुरु के निकट रह करके वो सभी एक कहां गया? फिर कृष्ण कहां गया? लाओ नहीं नहीं है। हम इतना जोर से नहीं बोल तो एक यदि कनिष्ठ व्यक्ति भी एक कनिष्ठ वैष्णव भी यदि हमको शुद्ध गुरु के पास लाता है और भक्ति क्या है इसमें उसको लाता है, एक कनिष्ठ व्यक्ति भी उसका भी ऋण हम नहीं चुका सकते, उसका भी यदि हम निंदा करें तो गए परमात्मा। और जो दो शुद्ध गुरु हैं जिसको जगत मान रहा हो और सचमुच में वे मध्यमाधिकारी या उसमें उत्तम अधिकार में प्रवेश करने वाले हों, ऐसी गुरु की यदि निंदा कोई करे तो उसकी क्या गति होगी? समझो, जिसके निकट सारा जीवन हरि कथा सुना, पालन पोषण पाया और उसके विरुद्ध आचरण करे तो क्या होगा? मैं समझता हूं कि उसके लिए दूसरे नरक को तैयार करने पड़ेगा, उस नरक से काम नहीं चलेगा। इसलिए खूब सावधान रहना, इस गुरु ऐसे जो गुरुद्रोही हैं, गुरु के विरुद्ध आचरण करने वाले हैं, उनकी छाया तक मत देखो, उससे बहुत दूर हो, नमस्कार करके दूर रहो, नहीं तो रही सही भक्ति जो है वो नष्ट हो जाएगी, तुम्हारा अनंत जीवन नष्ट हो जाएगा, फिर कभी भक्ति नहीं होगी। गुरु दयालु होते हैं, किसी का ये मान अपमान नहीं लेते, तो भी उनकी चरण की धूली रक्षा नहीं करेगी, छोड़ नहीं सकती। दूसरा उदाहरण इसी के साथ में देखो, बलदेव जी का रामलीला में नलनी देवी राम की बहुत सेवा की, राम की सेवा बहुत की, पुल बांधने में भी काम किया और युद्ध में भी राम की तरफ से रावण से लड़ा, किंतु लक्ष्मण जी जो गुरु तत्व हैं उनका कुछ विरोध किया और उनकी कुछ कुछ निंदा की, तो उस जीवन में तो मालूम नहीं पड़ा, किंतु दूसरे जीवन में उसका तो वही रहा, किंतु वही राम की दूसरी लीला कृष्ण लीला में वही दिव्य थीर आया। अब वही बलदेव जी ही तो लक्ष्मण है, लक्ष्मण ही बलदेव है, इसलिए बलदेव जी के प्रति उस समय से ही उसकी दुर्बुद्धि थी, इसलिए वो फिर निंदा कर रहे, कृष्ण की निंदा नहीं की। गुरु विषय भगवान की कोई निंदा ना करे, किंतु गुरु रूपी जो भगवान हैं, सेवक भगवान, आश्रय भगवान, उनकी निंदा करेंगे तो वो ऊपर वाले जो है नहीं सह सकेंगे, वो क्षमा नहीं करेंगे। हो सकता है कि बलदेव जी क्षमा भी कर सके, वो नहीं करेंगे, वैष्णव की चरण धूली नहीं छोड़ेगी, ओ शत्रु जैसा पीस करके उसे रख देगी। इसलिए द्विविध उस जन्म में भी बलदेव जी का विरोध किया, और बलदेव जी ने क्या किया, हल और मूसल लगा करके हल से खींच कर और मुसल से चकनाचूर कर दिया। चकनाचूर माने भक्ति राज्य से ही सदा के लिए निकाल दिया। इसलिए प्यारे बंधुओं भक्तों को विचार करके चलना, जहां गुरु और वैष्णव की कोई निंदा भी हो उसे बहुत दूर रहना, ये बलदेव जी की शिक्षा है। यदि भक्ति रखना जीवन रखना चाहते हो और नहीं तो गुरु निंदकों के पास में रहने से, उसकी छाया भी रहने से, वे तुम्हारे हृदय को दूषित और कलुषित कर देंगे। जन्म जन्मांतर में फिर सुधरेगा नहीं, बलदेव जी को ही मूसल और हल लेकर के तुमको कुछ फल वो चखाएंगे। इसलिए प्यारे बंधु ऐसे लोग आए कोई संबंध मत रखो इन गुरुद्रोहियों से। आजकल भक्ति का विचार करीब करीब उठ रहा है, बहुत कम लोग समझते हैं भक्ति का। गुरु को छोड़ देने पर भी जो व्यक्ति और उसको अपना मित्र यदि कोई समझे तो गुरु के निंदक से को अपना मित्र बना करके उसको हम सुधार लेंगे, ऐसी बुद्धि या ये दुर्बुद्धि हो तो वो भी गया जहां से, खुदा की कसम वो भी जाएगा। ये हंसी की बात नहीं, दुख की बात है। इसलिए प्यारे बंधुओं कोई भी हो, वैष्णव को छोड़ दो, कर्मी ज्ञानी योगी तपस्वी भी हो कर्मी भी हो, उसके भी निंदा मत करो। उसकी निंदा करने से न प्रशंसेत न निंदे। यदि निंदित व्यक्ति व्यभिचारी व्यक्ति की भी निंदा करेगा तो वो व्यभिचार इधर में आ जाता है, इलेक्ट्रिक की भांति। इलेक्ट्रिक जल रही वहां पर आग लग गई और पानी यहां से दो तो क्या होगा, पानी के साथ ही में आकर के तुम्हें भी खत्म कर देगा। तो ऐसे समझो। इसलिए वैष्णव और गुरु इनकी निंदा करने वाले उनको सुधारने की चेष्टा मत करो, उनका संग मत करो, स्वप्न में मत करो और की तो बात किया। इस तरह से विचार से चलो। और भी बलदेव प्रभु जी के बड़े सुंदर सुंदर विचार हैं, क्योंकि गुरु तत्व है, अखंड तत्व मूल यही है, इसलिए अखंड तत्व के ये उनके प्रकाश जैसे बतलाया और गुरु तत्व है। यदि नित्यानंद प्रभु के बलदेव प्रभु जी के आदर्श पर हम चलते हैं तो गुरु तत्व में होंगे, और नहीं तो उनके आदेश और विचारों को नहीं मानने से गुरु तत्व में नहीं होंगे। What I told you should tell. शाम को यही सब कथाएं बलदेव प्रभु जी के संबंध में हम लोग बोलेंगे, अभी सुन लीजिए।
Give us siksha, a teaching, how to render service. So Srila Guru has given an example. Just as by your hands, you can massage your feet. So in the same way, Baldev is no different from Krishna. But he's playing the role of servant of Krishna to give us teaching. Therefore he's called Akhanda Guru Tattva, the undivided principle of Guru. So then Srila Guru began to explain some of the pastimes of Baldev Guru and what their teachings are. First of all, he mentioned those pastimes already narrated by Pujpani Bhaktivinoda Madhava Maharaj, that in Baldev, in the form of the killer of Denakasura, he is actually removing the ignorance of the jivas. And when he killed Pralambasura, by this pastime, he's showing that Sri Guru is the only person who has the power to remove Palamba, that means hypocrisy or duplicity, from the heart of the living entity. We know that when Baldev, he was doing Tirthayatra, going on pilgrimage to many places during the battle of Kurukshetra. Finally, he arrived there at Kurukshetra, and the fight was going on, a duel between Duryodhan and Bhimsen. But what happened? Bhimsen, he defeated Duryodhan by using some cheating tactics of breaking his thigh. But this tactic was taken up by Bhimsen on the order or on the indication of Krishna. So therefore, Baldev, he could not do anything about it, even though his nature or his tendency was to favor Duryodhan. So he remained silent and he continued with his pilgrimage. Gradually he came to the place called Naimisharanya. There in Naimisharanya, 88,000 rishis, sages, were assembled together and they were hearing Puran Katha from a very prominent disciple of Srila Vyasadeva, who had been entrusted with the service of propagating Puran Katha, that is Lord Maharshan Sut. So Lord Maharshan Sut was telling this Puran Katha to all the rishis when Baldev Prabhu came. But all rishis, seeing Baldev arrive there, they gave respect to him. But Lord Maharshan, he was thinking Baldev is an ordinary person. He disrespected Baldev. He thought, I am a speaker of Puran Katha, I am sitting on Vyasasan, all are honoring me. But why should I give honor to this personality? So then Baldev Prabhu, he took a blade of kush grass, and by the touch of this, he killed Lord Maharshan Sut. So Srila Gurudev was explaining that Baldev did this because he's the Dharma Sthapaka. He's the one who establishes Dharma, religious principles. At that time, all the sages, they began to exclaim, hi, hi, alas, alas, what will we do now? Because we were hearing the Puran Katha from him, but now he has died. So how will we be able to hear the Puran Katha? So Baldev Prabhu said, if you like, I can bring him back to life. But the sages said, no, whatever you've done is correct. But somehow that we should hear Puran Katha, please make an arrangement. So then Baldev Prabhu, he called the son of Lord Maharshan, and he blessed him. So the son of Lord Maharshan, that is Sukhi Goswami. He's known as Ugra Srava. That means a person who has a very ferocious hearing tendency, very tenacious hearing tendency. Ugra Srava. So, because Baldev Prabhu empowered him and blessed him, therefore, he had a very incredible hearing capacity that after hearing Srimad Bhagavatam from his guru, that is Shukadeva Goswami, he retained everything. And then Sukhi Goswami, in turn, he became the speaker of Srimad Bhagavatam to the sages, headed by Shaunaka Rishi. So in this way, Srimad Bhagavatam comes to us now by the blessing of Baldev Prabhu. So by this pastime, Baldev Prabhu has shown to the world that Guru Nishtha, or faith in Sri Guru, is the backbone of bhakti. It is the main support of all devotional service. Without this, everything becomes completely worthless. So then Srila Gurudev, he made a point. He said, if someone tells you Harikatha and gives you some inspiration on the path of devotional service, and then they take you, or come with me, I know Sadhguru. And then they take you to the lotus feet of Sadhguru and you receive initiation there. Is it possible to repay that person? No. Completely impossible. You cannot repay him. Even if that person is Kanishtha Adhikari, you cannot repay him. And if you will make some offense, or only actually even you neglect that person or criticize that person in any way, then one's devotional service will be destroyed. What to speak? If that person is Kanishtha Adhikari, what to speak of that? What if that person is Madhyamadhikari or Madhyamadhikari entering into Uttam or Uttam Adhikari even? Then, or there's no hope for a person who neglect him and or commit any offense. So Srila Gurudev, he said, be very, very careful. Then Gurudev explained that if a person is Guru Drohi, that means they're ungrateful towards their Guru, or they're ungrateful to anyone who has helped them on the path of bhakti, doing palan poshan, nourishing them by giving harikatha, then what should we do? For a person who is Guru Drohi in this way, we should completely disassociate ourselves from them. We should not maintain any relationship with them. We should not maintain any relationship with that person's shadow even. Not even by our eyes should we see the shadow of that person who is ungrateful to his Guru Jana. Otherwise, bhakti will be destroyed and unlimited lifetimes will be completely wasted. So then Srila Gurudev gave an example that Dravidha Gorilla, he was a servant of Lord Ramchandra. And during Ram Lila, he served Ram in so many ways, and he fought on behalf of Ram when Ram attacked Lanka, and he fought against Ravana and his soldiers. But behavior had a defect. What was that? In his heart, he had neglect for Lakshman Prabhu, Sri Lakshman Prabhu. And by neglecting Sri Lakshman Prabhu, later, he was still in this world at the time when Krishna came. So Krishna came and Lakshman Prabhu came along with him in the form of Sri Baldev Prabhu. And this tendency to neglect Lakshman, it had grown and he became offensive towards Baldev Prabhu. So Sri Baldev Prabhu, he took his plow and he dragged that drill. And he took his club and he smashed him and killed him. So again, in this lila, Baldev Prabhu is giving us a teaching that if someone is offensive to Sri Guru, then you should try to save your life by not having any relationship with that offender. One should not have any friendship with such a person. And one should not even think, oh, I'll try to change him or correct him. But one should be completely disassociated from that person. Because by association, then, or one's faith in Sri Guru may be harmed or damaged in some way. And in this way, one's life becomes completely destroyed. So, Srila Gurudev, he said, Krishna has given teaching in Srimad Bhagavatam. Paraso bhava kamani, na prasamsati nindati. In this world, if someone they have some defects in their character and their behavior, we should not praise them and we should not criticize them. But rather, they should be out of our mind. Why? Because either by praising or criticizing such a person, then one will very quickly fall down from the path. Of spiritual life because of asatya vinideshita, being absorbed in temporary things. So then Srila Gurudev gave an example, just as if there's an electric wire. Now everyone is absorbed in the electric wire. So if there's an electric wire and you throw water on the electric wire, what will happen? Then that electricity will come to you and you'll be electrocuted. So in the same way, those who maintain relationship with an offender, with Guru Drohi, with those who neglect Hari Guru and Vaishnavas, what will happen? Oh, then their qualities, their offensive qualities, will very quickly come to us, and then our life will be spoiled. So Sri Baldev Prabhu, who is Akhanda Guru Tattva, the embodiment of the principle of undivided, the wholesale Guru Tattva, he has given these very beautiful teachings through his pastimes. One chat out to the Akibas in the real time.
Hare Krishna. So,